नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों दूसरे कुरिन्थियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, जो नए नियम की पत्री है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि यह पत्री पौलुस के द्वारा लिखी गई है और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस के जीवन में कठिनाइयां आई, इसके बावजूद भी वह परमेश्वर की निकटता में उन आशीषों को ग्रहण करते रहा। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, आपकी प्रेम, दया और करुणा के लिए जिसे आप हमारे जीवन में देते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सुने उसे हम समझ सकें, जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार से चलने पाएं। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपने आशीष प्रदान कीजिए, विशेष करके उनको जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एक एक के जीवन में आपकी आशीष मांगते हैं। हम सबके साथ हो, हमारे सहायक हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हम देख रहे थे कि पौलुस अनेक बार मृत्यु के मुंह से निकाला गया था, केवल इसलिए कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। उसने प्रार्थना करने के लिए विश्वासियों को आभार व्यक्त किया। पौलुस एक डावाडोल चरित्र वाला व्यक्ति कदापि नहीं था। वह वचन का पक्का था और परमेश्वर की इच्छा में उसके लिए हर एक स्थान स्वर्ग का रूप ही था। आइए हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री एक अध्याय उसके 21 और 22 पद में लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। अब यहाँ विश्वास योग्य परमेश्वर है जो सच्चा है, और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा भी हैं, और मेरे विचार में यह पवित्र आत्मा की परिपूर्ण सेवा है जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है। अब प्रश्न यह है, आप मसीह में दृढ़ कैसे किए जाते हैं? कुरिन्थियों के डावाडोल विश्वास के लिए पौलुस ने अपने प्रथम पत्र में लिखा था, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 58 पद में, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वता बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। दृढ़ किए जाने का अर्थ क्या है? हम यह मानते हैं कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है। पहले तो पवित्र आत्मा पाप बोध उत्पन्न करता है। जी हाँ, प्रभु यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा संसार में आएगा तब वह संसार को पाप, धार्मिकता और दंड का बोध करवाएगा, और जब हम अपने पापों का बोध हो जाने पर उन्हें पश्चातापी मन से स्वीकार करते हैं और मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, तब वह अगला काम यह करता है कि हमें नया जीवन प्रदान करता है, और हमें नया जीवन ही नहीं देता है, हम में अंतर्वास करता है और हमें बाप्तिस्मा देता है। यह बड़ा ही ध्यान देने योग्य पद है, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। अब कौन परमेश्वर है? पवित्र आत्मा। जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर मसीह की देह में दृढ़ किए जाते हैं, तब आप मसीह की बाहों में सुरक्षित हो जाते हैं। जी हाँ, आप मसीह की देह के सदस्य होकर सुरक्षित हो जाते हैं। यह कैसी अद्भुत सुरक्षा है! पवित्र आत्मा के कामों की चर्चा करते समय पौलुस वर्तमान काल का प्रयोग करता है। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा आपके लिए आज भी यही काम करता है। वह आप में पाप का बोध जगाकर आपको नया जीवन देता है, आप में अंतर्वास करता है और आपको बपतिस्मा देता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। हमारे आज के युग में पवित्र आत्मा के अभिषेक को अनदेखा किया जाता है। पहला योहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, तुम्हारा तो उस पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जी हाँ, यह अभिषेक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें सत्य में लेकर चलता है। पहला योहन्ना की पत्री हमें बताती है 2 अध्याय उसके 27 पद में, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। पवित्र आत्मा की यह सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान आपको न तो पत्राचार से प्राप्त होता है और न ही उपहार स्वरूप दिया जाता है। मेरे मित्रों, आप में अंतरवासी पवित्र आत्मा आपको सिखाता है और एकमात्र वही है जो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आपको देता है। यही कारण है कि बाइबल एक चमत्कारी पुस्तक है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 12 और 13 पद में, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह आपको संपूर्ण सत्य में लेकर चलेगा, जिसने हम पर छाप भी कर दी है। यह आत्मा की अद्भुत सेवा है। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय के 30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। क्या यह संभव है कि पवित्र आत्मा को दुखी किया जाए? नहीं, उसने हम पर अपनी मुहर लगाई है और एक दिन वह हमारा उद्धार करेगा। यह ऐसा है जैसे कि हम पत्र खो जाने के भय से उसे पंजीकृत करके उस पर मुहर लगवाते हैं। डाक सेवा अब यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती है कि आपका पत्र आपके गंतव्य और निश्चित स्थान पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार सब वैधानिक दस्तावेजों पर मुहर लगी होती है, जो स्वामित्व का चिन्ह भी होता है। आपने मवेशियों पर भी चिन्ह लगे हुए देखे होंगे, वे उनके स्वामियों का चिन्ह होता है। जी हाँ, इसी प्रकार पवित्र आत्मा ने आप पर मुहर लगाई है कि आप परमेश्वर के हैं। अतः मेरे मित्रों, यदि आप उसकी भेड़ हैं तो आप खो नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आप भटक जाएं, परंतु वह आपको खोज लेगा। लूका रचित सुसमाचार में एक स्त्री दर्शाई गई है जो अपना घर झाड़ रही है और उसका खोया हुआ सिक्का उसे मिल जाए और अंततः वह उसे खोज ही निकालती है। इसे हम लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 8 पद में देखते हैं। यह पवित्र आत्मा का प्रतीक है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। दूसरे शब्दों में, तुम्हें जो बयाना दिया गया है वह पवित्र आत्मा है। बयाने का अर्थ है कि अभी और पैसा आने वाला है, जैसा कि आप भूमि या मकान खरीदते समय करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जिसका अर्थ है कि अभी और भी आने वाला है। यह एक अद्भुत बात है। मनुष्य तो बयाना देकर चूक जाता है, परंतु परमेश्वर के सौदे में चूक की संभावना नहीं है। उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया है, उसने मूल्य भी लिख लिया है, जो सुनिश्चित करता है कि वह आत्मा सुरक्षित पिता के पास पहुंचाई जाएगी। इसका अर्थ है कि उद्धार प्राप्त आत्मा निश्चित सौदे में है। परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी में पवित्र आत्मा अवस्थित किया है। वह बयाना है, वह विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की हमारे जीवन के अनुभव में परमेश्वर की परिपूर्णता आए। आज आपको क्या आवश्यकता है? आप जानते हैं कि वह दया का धनी है, वह दया का पिता है। आपको क्या चाहिए? आप उसके पास जाकर क्यों नहीं मांगते हैं? क्या आपको सामर्थ्य की आवश्यकता है? क्या आपको आनंद की आवश्यकता है? क्या आपको बुद्धि की आवश्यकता है? क्या आपको सहायता की आवश्यकता है? ये सब सांत्वना है। वह सब सांत्वना का परमेश्वर है। पौलुस जानता था, उसने व्यक्तिगत अनुभव भी किया था। हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 1:23 में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थियुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है कि यदि वह वहाँ आ गया होता तो वह अपने प्रथम पत्र में लिखी बातें पूरी करता। आपने देखा कि कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे पत्र में उसने सुधार के निर्देश दिए थे। उस पत्र में वह वास्तव में कठोर था। वह सच कह रहा था, यदि मैं आता तो तुम्हारे साथ कठोरता का व्यवहार करता, परंतु मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता था और देखना चाहता था कि तुम स्वयं ही अपने को सुधार ले आओगे या नहीं। पौलुस कहता है, मैं आपकी आत्माओं का रखवाला नहीं हूँ, मैं आप पर प्रभुता दिखाना नहीं चाहता हूँ, आपको मसीह में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, मैं तो आपके आनंद में सहायक होना चाहता हूँ। तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो, आपको और मुझे भी। मेरे मित्रों, अपने विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। पौलुस उनसे दूर इसलिए था कि उनका विश्वास दृढ़ हो और वे प्रभु में बलवंत हो जाएं। यही कारण है कि परमेश्वर हमें कष्टों और कठिनाइयों में पढ़ने देता है ताकि हम उसके और करीब आ जाएं। मित्रों, यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है। अब हम अपना अध्ययन अध्याय 2 से जारी रखेंगे। इसका विषय है पाप में गिरने वाले पवित्र जन के पुनरुद्वार में परमेश्वर की सांत्वना। जी हाँ, यह पत्री हमें परमेश्वर की सांत्वना के बारे में अद्भुत सत्य समझाती है। पहले अध्याय में हमने जीवन योजना में परमेश्वर की सांत्वना के बारे में देखा था। इस अध्याय में हम पाप में गिरने वाले पवित्र जन के पुनरुद्वार में परमेश्वर की सांत्वना को देखते हैं। इससे पूर्व की प्रेरित इस विषय पर चर्चा करे, वह अध्याय 1 के विषय पर भी चर्चा करता है। वह अपने कुरिन्थ न पहुंचने के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। इसके पश्चात वह कुरिन्थ की कलीसिया में पाप करने वाले पवित्र जन के बारे में विचार व्यक्त करेगा। अंत में वह स्पष्ट करेगा कि परमेश्वर हमें मसीह में जयवंत बनाता है। पौलुस का स्पष्टीकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो आइए हम देखें दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 उसके 1 में लिखा है, मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने न आऊं। ध्यान दीजिए, पौलुस साफ कहता है कि वह उनसे निराश था और यदि वह आ जाता तो दुख का कारण होता। तब हम आगे देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2:2 में, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा, केवल वही जिसको मैंने उदास किया। यहाँ पर पौलुस आंखों में आंसू और दिल में दुख लेकर वहां आना नहीं चाहता था, अन्यथा वह उन्हें भी रुलाता। पौलुस को प्रसन्न कौन कर सकता था, वे सब रो रहे थे। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2:3 में लिखा है, और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। पौलुस हर्षित मन से वहां जाना चाहता था। वह आशा कर रहा था कि उसका पत्र पढ़कर उन्होंने अपना सुधार कर लिया होगा। अब पौलुस अपने मन की बात को कहता है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2:4 में। वह कहता है, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। आज जब प्रचारक कठोरता से वचन सुनाता है या प्रचार करता है तो बहुत से विश्वासी उससे अलग हो जाते हैं। कभी कभी परमेश्वर के वचन से प्रकट सुधार कलीसिया को वास्तव में प्रताड़ित करता है। कुछ लोगों के विचार में पास्टर को ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ मेरे मित्रों, एक सच्चे पास्टर को ऐसा ही कहना चाहिए। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 4:1-2 में पौलुस तिमोथियुस को आज्ञा देता है, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आज जो भी प्रचारक मंच पर खड़ा होता है उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह अनुचित बात के लिए कलीसिया को डांटे। अनेक पवित्र जनों को यह अच्छा नहीं लगता है, पौलुस उनसे कहता है कि उसका झिड़कना इसलिए नहीं कि वह उनसे घृणा करता है, परंतु इसलिए कि वह उनसे बहुत प्रेम करता है। एक विश्वास योग्य पास्टर या सेवक वचन को ज्यों का त्यों प्रचार करके अपना प्रेम प्रकट करता है, न कि कलीसिया को मक्खन लगाकर। अब हम आगे देखेंगे पापी पवित्र जन का पुनर्द्वार। मित्रों, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि पौलुस के प्रथम पत्र में कुरिन्थ की कलीसिया को अनैतिकता की डांट लगाई गई थी। वे अपनी कलीसिया में कौटुम्बिक व्यभिचार के प्रति निश्चित थे, पवित्रता का स्वांग रचते थे। ऐसे अनैतिकता तो अन्य जातियों में भी विस्मय का कारण थी, परंतु कलीसिया उसे सहन कर रही थी। पौलुस ने उन्हें लिखा था कि वे इसे सुधारें। उसने उस फसाद का अधिनियम लिखा, उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो, जिसे हम पहला कुरिन्थियों 5:13 में पढ़ते हैं। उन्होंने पौलुस की आज्ञा का पालन किया। तब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 2:5-6 में, यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं, कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। उन्होंने पौलुस के आदेशानुसार उस व्यक्ति का बहिष्कार किया और यह एक उचित काम था। उस व्यक्ति ने अपना पाप स्वीकार करके मन फिराया। अब वे क्या करें, उसे क्षमा कर दें। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2:7-8 में हम पढ़ते हैं, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। जी हाँ, वह अपने पाप के कारण ही नहीं बहिष्कार के कारण भी परेशान हो जाएगा। इसके पश्चात उसे गले लगाकर पुनः सहभागिता में ले लो। पौलुस ने गलातिया के विश्वासियों को लिखा 6:1 में, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2:9-11 में लिखा है, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। मित्रों, आप समझे, शैतान हमें पदभ्रष्ट करना चाहता है। कभी कभी वह आंखों पर पर्दा डाल देता है कि हम घोर अनैतिकता को न देख पाए। आज हमारी कलीसियाओं में इसके अनेक उदाहरण हैं। मैं एक ऐसे सेवक को जानता हूँ जिसका विभिन्न कलीसियाओं में काम है। उसके अलग अलग स्त्रियों से अनैतिक संबंध थे। वह जिस भी कलीसिया में गया वहाँ उसकी कहानी को लोग जानते हुए भी उन्होंने उसे अपनाया। उनकी अनैतिकता को अनदेखा करके वे मसीह के उद्देश्य को हानि पहुँचा रहे थे। मेरे मित्रों, यदि वह अपना पाप स्वीकार करके मन फिरा लेता जो उसने कभी नहीं किया तो वे उसे ग्रहण कर सकते थे। दुर्भाग्य से हमारे कठोर हृदय भाई कभी किसी को क्षमा नहीं करते हैं। यह भी शैतान का काम है, ठीक वैसा ही जैसा अनैतिकता को अनदेखा करना। शैतान उन विश्वासियों का लाभ उठाता है जो क्षमा करना नहीं चाहते। हमारी रूढ़िवादी कलीसियाओं में हम दो बातें नहीं सुनते हैं, पाप स्वीकारन और क्षमा पत्र तथा क्षमादान। हमारी अधिकांश कलीसियाओं में अशभ्यता की दुष्टता है। मित्रों, हमें स्मरण रखना है कि हम सब पाप में गिर सकते हैं। यदि किसी ने पाप किया है तो अति संभव है कि हम भी पाप कर सकते हैं। यदि पाप करने वाला मन फिराए तो उसे नम्रता की आत्मा में पुनः ग्रहण किया जाना चाहिए, उसे सहभागिता में ले लेना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। यह सेवा की एक भूमिका है, यह एक महिमामय सेवा है। क्या आप इसे करना नहीं चाहेंगे? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2:12 में लिखा हुआ है, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। ध्यान दे, वह त्रोआस आया तो देखा कि वहाँ सुसमाचार के लिए द्वार खुला है। यह परमेश्वर की इच्छा थी कि वह कुरिन्थ जाने की अपेक्षा वहां सुसमाचार प्रचार करे। अतः पौलुस दुचिंता नहीं था, वह निष्ठावान था, वह परमेश्वर द्वारा दिए गए अवसर को विश्वास योग्य रीति से पूरा करना चाहता था। तब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2:13 में लिखा हुआ है, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। ध्यान दीजिए, त्रोआस में सुसमाचार सुनाते समय भी उसका मन दुखी था कि तीतुस कुरिन्थ की कलीसिया का समाचार अब तक नहीं लाया था। वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब वह मकिदुनिया में फिलिपी गया। यहाँ तीतुस पौलुस से मिला और शुभ संदेश सुनाया कि उसके आदेशानुसार कलीसिया में पाप का निवारण किया और अब वह मनुष्य पाप से मन फिरा चुका है। मेरे मित्रों, यह पौलुस के लिए आनंद का विषय था। आज हम में से कितने हैं जो इन बातों को सुन करके अर्थात अपने पापों को जान करके पापों से मन फिराते हैं? क्या आज आप अपने पापों से मन फिराने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे, आपको शांति प्रदान करे? कुरिन्थ की कलीसिया में समस्याएं थी, वे पाप में जीवन जी रहे थे, परंतु उन्होंने मन फिराया और वे फिर से परमेश्वर की निकटता में आ गए। आज परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक कलीसिया परमेश्वर की निकटता में आ जाए, अपने मनों को फिरा ले, ताकि उस कलीसिया में परमेश्वर का वास हो और वहां पर जागृति आनी पाए। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक बातों को सीखा है और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करे एवं बहुताय से आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
सारे जहां में तुझसा कोई